الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أزل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخره أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم محترم دوستو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر میں ایک خطبہ دیتے تھے گویا ہماری بھی یہ سنت کہ رمضان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں رمضان کے فضائل کو بیان کیے تو ہم نے چاہا کہ اسی سنت کو ہم اسی ایک طریقے کو ہم بھی اپنائیں تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم عبادت کرنے والوں میں سے بنیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن کریم میں رمضان کے متعلق فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو ہی قبول کیا، یعنی قبول رمضان کے مہینے میں ہی اتارا۔ معلوم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ جو بہت ہی برکت والا ہے، جس میں اللہ نے پوری امت کی ہدایت کی ایک کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے اس کو اتارا۔ قرآن کے اترنے کے بھی دو طریقے، یعنی دو نزول ہے اس کے۔ ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کے اندر نازل ہوا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ سو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا، وہ یہی نزول ہے کہ ساتوں آسمان سے لے کر آسمان ہے، ساتوں آسمان میں یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا گیا، یہ قرآن کریم کا پہلا نزول ہے۔ دوسرا نزول آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر 23 سال میں پورا قرآن اتارا گیا. دوسری بات, سب سے یہ تو قرآن رمضان میں اتارا گیا اور قرآن بھی شروع ہوا یعنی سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ بھی راج قول کے مطابق 17 رمضان المبارک کو اتری. سب سے پہلی قرآن کی آیت بھی آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 رمضان پر اتری, جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے اندر میں مشغول تھے. گویا پورا قرآن بھی لیلۃ القدر میں لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر اترا, اور قرآن کی پہلی آیت بھی آسمان دنیا سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اس دنیا میں اتری, وہ بھی رمضان میں. تو رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ پاک نے چوز کیا قرآن کو اتارنے کے لیے, ورنہ اور بھی بہت سارے مہینے ہوتے تھے. قرآن پاک ہی کیا, قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں اللہ پاک نے رمضان میں اتاری ہیں. زبور ہے, تورات ہے, بائبل ہے, ان تمام کو, بلکہ صحف ابراہیم اور صحف ابراہیم ہے, صحف موسیٰ ہے, موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیح پہ اترے ہیں وہ بھی رمضان ہی میں اتارے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں, داؤد علیہ السلام پر تورات, یہ 6 رمضان کو اترا, 6 رمضان کو. زبور حضرت داؤد علیہ السلام السلام پر 12 رمضان کو اترا, یا ایک روایت میں 18 رمضان کو اترا, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 یا 13 رمضان کو اتری. اندازہ کیجئے, ابراہیم علیہ السلام السلام کے صحیح پہ 3 رمضان کو اترے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے صحیح پہ بھی رمضان میں صحف ابراہیم جو تورات کے علاوہ. سو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں جتنی پچھلی ہے وہ سب کے سب رمضان میں اتری ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر کے قرآن کریم بھی اللہ پاک نے رمضان میں اتارا. اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں جو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کو اور رمضان کو بہت زیادہ جوڑ ہے اس مہینے کے ساتھ. جبرائیل علیہ السلام والسلام بھی رمضان ہی میں قرآن کو سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا قرآن سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو. اس لیے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں وہ بھی رمضان میں نازل ہوئے, قرآن کریم رمضان میں اترا. تو رمضان المبارک میں عبادت کا جو اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس میں خاص طور پر 2 عبادت ہے, میری مائیں اور بہنیں اس عبادت میں کمی کبھی کوتاہی نہ کریں, ایک روزہ ہے اور ایک تراویح ہے. اس بہانے سے ہم تراویح میں پورا قرآن سن لیتے ہیں, ویسے ہم پورا سال نہیں پڑھ پاتے, نہیں سنتے, تو کم سے کم تراویح کی پابندی کریں گے تو ہم قرآن کو سنیں گے. یہ مردوں کے لیے. لیکن جو 2 سب سے بڑی اہم عبادت ہے, روزہ اور تراویح کے علاوہ ایک اور عبادت ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی زندگی میں 10 سال آپ رہے ہیں, ہر سال اعتکاف کیا, 1 سال بھی مس نہیں کیا. جس سال آپ کا مس ہوا تو اس کی قضا کی اس کے فالوئنگ ایئر میں 20 دن آپ بیٹھے. معلوم ہوتا ہے کہ اسی رمضان میں ایک رات بھی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, جو ہماری پوری زندگیوں کا ثواب ایک رات میں مل جاتا ہے. ایک رات میں پوری زندگیوں کا. وہ کیا ہے کہ اگر ہمیں 21 یا 23 رمضان یا 25 या 27 या 29, अगर इन रातों में हमने इबादत की तो ऐसी सुयन आखिर 10 रातें ही समझ लो हमने इबादत की है तो हमें मोर देन 80 इयर्स का सवाब एक ही रात में मिल जाता है। ये तो वादा अल्लाह ने कुरान में किया है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र का सवाब 1000 महीनों से ज्यादा है, यानी उसके साल बनते हैं 83 इयर्स जितने बनते हैं करीबन, इतना सवाब एक रात में। अंदाजा कीजिए जो लोग हर साल एतिकाफ में बैठते हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और उनके इंतकाल के बाद पाबंदी से एतिकाफ करती थी। हमारी दूसरी माए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है एतिकाफ किया करती थी अपने घरों में, मस्जिद में, मस्जिद नबवी में या अपने घरों में। एतिकाफ की वजह से आप अंदाजा करो किसी को 10 साल एतिकाफ का अल्लाह पाक ने तौफीक दे दी और मौका मिल गया तो 10 साल के तुम गिनते चले जाओ 83 इयर्स, कितने सालों का उसको सवाब मिल गया है। जो पहली कौम जो हजारों हजारों साल रहती थी 500 300 400 उनको वो सवाब नहीं मिला जो सवाब हमें एक रात में मिल जाता है। लेकिन वैसे तो रमजान मुबारक का महीना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। अगर अल्लाह इस उम्मत को अजाब देना चाहते, अगर अल्लाह इस उम्मत को अजाब देना चाहते तो उनको दो चीजें न देते, एक तो कुलहू अल्लाह अहद की सूरत न देते, ये बहुत बड़ी सूरत है, कुलहू अल्लाह अहद अल्लाह समद बुखारी शरीफ में है, 3 बार पढ़े तो एक कुरान का सवाब है, बुखारी शरीफ की सही हदीस है। अगर कोई आदमी चाहे कि मैं अपने माँ को सवाब एक कुरान पहुंचाना चाहता हूं तो 3 बार कुलहू अल्लाह अहद कम से कम पढ़ ले तो उस माँ और बाप को एक कुरान का सवाब मिलता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ इस उम्मत की खसूसियत है कि जिसको इतनी छोटी सूरत देकर उसको 3 बार पढ़ने से एक कुरान का सवाब बतलाया गया। और दूसरी अगर कोई खसूसियत वाली चीज इस उम्मत को मिली है तो सूरतुल फातिहा है। अलहमद शरीफ पहले किसी उम्मत को नहीं मिली है, इसी उम्मत को मिली है। और तीसरी चीज रमजान का रोजा वो भी रखते थे, लेकिन जैसे कुरान में भी आयत मैंने पढ़ी कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलैकुम, तुमसे पहले भी रोजा रखते थे, लेकिन रमजान का जो महीना 30 रोजे और मुबारक महीना जिसमें हर घड़ी अल्लाह की रहमत उतरती है, ये अगर मिली है तो सिर्फ इस उम्मत को मिला है। इसलिए अल्लाह कुरान में तो फरमाते हैं ममा खलकतुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को हमारी इबादत के लिए पैदा किया, हमारी इबादत के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। तो चाहिए तो ये था कि इंसान को यूं कहते अल्लाह मैंने तुझे मेरे लिए पैदा किया, जैसे कहते भाई काम वाले को दुकान में सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक काम करना है, अगर 6-7 घंटे में वो दूसरी दुकान में भी काम करेगा तो मालिक क्या कहेगा, तूने मैंने तुझको रखा है मेरी दुकान के लिए न कि उसकी दुकान के लिए। तो अल्लाह पाक ने मुझे और आपको पैदा ही किया है, ये कुरान में है, उसकी इबादत के लिए। तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि अल्लाह मुझे और आपको यूं कहते हर घड़ी हर इबादत इबादत ही कर, हर सेकंड इबादत ही करते रहो, किसी और काम की इजाजत न दी जाती, न खाने की न पीने की न घूमने की न काम करने की न नहाने की और न सोने की, कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन इंसान के साथ अल्लाह पाक ने कुछ तबीयी जरूरत भी रखी है, उसके खाने की जरूरत भी रखी है, उसके पीने की जरूरत भी रखी है, भूख का भी तकाजा है, प्यास का भी तकाजा है, कुछ ख्वाहिशात भी रखी है ताकि मियां बीवी मर्द औरतें शादी करें और वो मियां बीवी की तरह जिंदगी गुजारे और उससे बच्चे पैदा हो। और उनके पेश नजर अल्लाह तबारक व तआला ने 24 घंटे इबादत के बजाय इबादत के कुछ अवकात दे दिए, चलो कुछ नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना। क्या कहा, दीन में
वैसे तो हदीस में है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आ रहे थे तो 50 नमाजें पढ़नी थी। अब 50 नमाजें मेरे और आपके जिम्मे होती तो कब सोते, कब खाते, कब काम करते, कब पीते, 50 नमाज के अंदाजे करो। जब ये 5 नमाज है फिर भी अल्लाह ने कहा चलो तुम खाते हो पीते हो, तकाजे हैं तुम्हारे, तुम 5 नमाज ही की तय, 5 नमाज ही को पढ़ लेना वक्त पर, मैं तुम्हें 50 नमाज का सवाब दे दूंगा। कितना अहम है, कितना ज्यादा सवाब है, अल्लाह पाक ने कितना आसान कर दिया। तुम तिजारत भी करो, तुम कमाओ पियो, लेकिन 5 वक्त का टाइम आ जाए तो वो नमाज ना छोड़ना। लेकिन इंसान का मिजाज ऐसा है जब वो किसी चीज में लगता है तो वो उसका ऐसा गुलाम बन जाता है कि उसका दिल उसके अंदर ऐसा लग जाता है कि अपनी दूसरी जिम्मेदारी को भूल जाता है। ये इंसान काम में जाता है नमाज भूल गया, मार्केट में गया नमाज भूल गया, दूसरे काम के अंदर में तिजारत में दुनिया की वजह से इंसान अल्लाह को भूल जाता है। इसलिए दुआ मांगी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुबारक महीना आ रहा है उसको छोड़ना नहीं, मैं नहीं आप नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से दुआ मांगते अल्लाह मुबारक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह रजब में भी बरकत अता फरमा और शाबान में भी, और मुझे ऐसी उम्र अता फरमा कि मैं रमजान का पूरा महीना आराम से इबादत कर सकूं। ये कौन, इमामुल अंबिया दुआ कर रहे हैं रमजान के लिए 2 महीने से पहले, रजब का चांद देखकर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे रमजान का महीना नसीब फरमा। अभी तो रजब बाकी है, शाबान बाकी है और उसके बाद रमजान आ रहा है, जिनकी रात दिन इबादत का क्या अंदाजा मैं और आप लगा सकते हैं। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने चांद की दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हिल्लहू अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामति वल इस्लाम। अभी आएगी शायद चांद नजर आ जाए रमजान का जुमा की शाम को, 29 भी हो सकता है यह महीना, हो सकता है। तो कौन सी दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा हिल्लहू अलैना बिल अमन वल ईमान सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्ला। ए अल्लाह इस चांद को हमारे लिए अमन ईमान वाला बनाना। ये चांद जो नजर आ गया ना रमजान में तो चांद देखकर बाज के तो मुरी खड़ा हो जाते हैं, तभी रोजे रखने पड़ेंगे, और ईद के चांद देखकर इतनी खुशी के दुआ भी भूल जाते हैं। तो रमजान का चांद देखकर दुआ इसका पढ़ते हैं और ईद का चांद देखकर दुआ ही भूल जाते हैं। अल्लाहुम्मा हिल्लहू अलैना बिल अमन। अमन, अमन किसको कहते हैं, अमन का माना है अल्लाह पूरा महीना किसी किस्म की मुसीबत मुझ पर मेरे घर में ना आए। अहिल्लहू अलैना बिल अमन वल ईमान। ईमान का क्या माना, मुझे ईमान पर बाकी रखना, अगर मौत भी आ गई तो ईमान ही पर मौत आ जाएगी। सलामती वल इस्लाम, सलामती देना, सुकून देना, पीस देना और इस्लाम पर बाकी रहना। रब्बी व रब्बुकल्ला, ए चांद मेरा भी रब है वही तेरा भी रब है। उसके बाद अल्लाह के नबी दुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़हब बिशहरिन कदा व जा बिशहरिन कदा। ये महीना चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह पाक ने मुझे दूसरा महीना दे दिया, तो अल्लाह की तारीफ करते थे अल्लाह ने मुझे ये महीना दे दिया। तो हमें बहुत सारी दुआएं नबी दुआ सीखनी चाहिए, हम सीखते नहीं है नबी की दुआएं सीखनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक दुआएं बहुत अच्छी है, एक दुआ है लेकिन इतने फायदे हैं अगर हम सोच कर पढ़े। एक दुआ पहले मैंने सुनाई थी अगर आपको याद हो, कोई आदमी नई बस्ती में जावे, कोई आदमी यहां से लेकर पाकिस्तान गया, यहां से लेकर भाई कभी गया नहीं लेस्टर तो लेस्टर चला दाखिल हो रहा है, या कभी बोल्टन में दाखिल हो गया, या कभी ब्लैकबर्न चला गया, नई बस्ती हमारी नस्ती है और उससे नई बस्ती है, तो उसमें दाखिल होते हैं तो हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं? कोई भी नई बस्ती में जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस अ वेरी ब्यूटीफुल दुआ, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा। क्या अच्छी दुआ, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालि अहलिहा इलैना। ए अल्लाह, तो हमारी मोहब्बत इस बस्ती वालों के दिल में पैदा कर दे, मेरी मोहब्बत अल्लाहुम्मा हब्बिब ना, हमारी मोहब्बत इला अहलिहा, इन बस्ती वालों के दिल में मेरी, ताकि बस्ती में हम जा रहे हैं कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, अल्लाह हब्बिब ना इला अहलिहा। ऐसी दुआ तो याद करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। और साथ में वह हब्बिब सारी अहलिया इलैना, इस बस्ती में जितने अल्लाह वाले लोग रहते हैं, जितने उलमा हैं, सुलाह हैं, नेक लोग हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो। क्या दुआ की, अल्लाह हब्बिब ना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना, बस्ती वालों के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मेरे दिल में बस्ती वालों की मोहब्बत डाल दे, ताकि मैं भी कोई तकलीफ ना पहुंचाऊ इनको। सो ये दुआएं हैं इस किस्म की, हब्बिबना इला अहलिहा, तमाम लोगों के दिलों में मैं तो मोहब्बत डाल नहीं सकता, अल्लाह डाल सकते हैं, नेक हो तो भी बुरा हो तो भी, ताकि हमें किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। और इस बस्ती में बहुत सारे रात में तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे, बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे होंगे, जिसको तुम उनकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, तो गोया क्या होता है, यहां के बूढ़े लोगों की सोहबत मेरे अंदर ना आ जाए, नेक लोगों की सोहबत मेरे अंदर में आ जाए। ये इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब कभी कोई नई बस्ती में जाओ ना, ये दुआ याद कर लेनी चाहिए, अल्लाह हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिहा इला अहलिहा। सही हदीस। और एक दुआ और है असलाब के यहां, जब उनमें से कोई नई बस्ती के अंदर में जाता तो ये दुआ भी करते, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी जलीसन सालिहा, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी जलीसन सालिहा। ये बुखारी शरीफ में हजरत अलकमा रजी अल्लाह तआला से मरवी है ये दुआ, अलकमा रजी अल्लाह सहाबी है, उनसे मरवी है, कदिम तो शामा फसल्लैतु रकअतैनि, मैं शाम गया, हजरत कह रहे हैं मैं शाम गया और वहां मैंने जाकर दो रकात पढ़ी और मैंने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, ए अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा कि इस बस्ती में कोई अल्लाह वाला हो, उसकी बस्ती उसकी मजलिस में बैठना नसीब करो। हम जाते हर बस्ती में कोई नेक लोग होते हैं, तो अल्लाह मुझे नेक लोगों की मजलिस नसीब फरमा, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना नसीब फरमा। ये कौन कह रहे, अल कमा रज़ी अल्लाह तआला, जिनके बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम बहुत तारीफ करते थे अलकमा के बारे में। हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला ने शागिर थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर थे, कुछ लोग आए हजरत इब्न मसूद के पास के तुम्हारे ये शागिर तुम्हारी तरफ पढ़ते, अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अल्लाह ने लहन दाऊदी का दिया था आवाज बढ़ा, तो तुम्हारे स्टूडेंट भी तुम्हारी तरफ पढ़ते, हाँ मैं किस टेस्ट कर लू, हाँ अलकमा तुम पढ़ो, तो अलकमा तो सामने बैठे बैठे तालिब इल्म तुम पढ़ो, तो एक ने कहा हजरत ये तो इतना अच्छा नहीं पढ़ता है, कहा नहीं इसी को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खानदान की बड़ी तारीफ की है और इतना अच्छा पढ़ा वो, जो आने वाले मेहमान जो इम्तिहान लेने वाला था वो खुश हो गया, क्या अच्छा ये अलकमा रज़ी अल्लाह तआला। मालूम होता है जब तुम कहीं भी जाओ, कोई भी शहर में आप जाओ, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जाओ, आप जाओ अक्सा जाओ, आप पाकिस्तान में जाओ कितने अल्लाह वाले वहां, आप हिंदुस्तान चले जाओ, आप बांग्लादेश चले जाओ और जगह चले जाओ, बड़े बड़े बुजुर्ग है वहां, तो आप ये दुआ करेंगे दाखिल होते वक्त, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी जलीसन सालिहा, ए अल्लाह, या कम से कम उर्दू में कहते अल्लाह यहाँ के नेक लोगों की मजलिस मुझे नसीब फरमा, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक आपका उनकी मजलिस में बैठना नसीब फरमाएंगे। इसलिए ये महीना है बहुत ही जबरदस्त महीना आ रहा है, ऐसी दुआएं याद करनी चाहिए, लेकिन
हमें फुर्सत कहाँ कमाने से, घूमने से, सोने से, तो हम कहाँ याद करेंगे? तो बहुत तुम्हारा काम होगा, काम हमारा काम नहीं है। अरे ये सबके लिए है, सारे साहबा तो मौलवी नहीं थे, सारे साहबा तो कुछ तो ऐसे ही मुसलमान हो गए फतेह मक्का में, फिर अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया कुछ साल कुछ महीनों के बाद। कितने फतेह मक्का में मुसलमान हो गए? हजारों। वो कहा 25 साल से थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसलिए ये एक हमारा जहन बना हुआ है कि ये हमारा काम नहीं है, ये उलमा का काम है। नहीं, मुझे चाहिए खुशी, मैं चाहूं कि मुझे अच्छी मदरिस मिले, मैं चाहूं कि मुझे सुकून मिले, मैं चाहूं कि मुझ पर कोई मुसीबत ना आए, तो फिर हमें वो दुआएं क्यों याद नहीं होती जो दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है? ये हर एक के लिए है, सिर्फ उलमा के लिए नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला के यहां भी रमजान मुबारक का बड़ा अहतमाम होता है। देखिए हदीस में आता है, इन्नल जन्नता تتزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل، یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے فضائل شہر رمضان میں، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، جب ایک رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس رمضان یعنی لاسٹ رمضان سے لے کر اس رمضان تک جنت کو اللہ بیوٹیفائیڈ کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، خوبصورت۔ जैसे आपके यहाँ अगर कोई हमारे यहाँ तो बड़ा आदमी वीआईपी आने वाला हो, चलो ब्रेकफास्ट में कोई आने वाला है, मेयर है, बहुत बड़ा आदमी आने वाला है, चलो भाई प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, तो कैसा सब वहां के रोड को वगैरह को सब थोड़ा ब्यूटीफाइड लाइट वगैरह लगा देते हैं। रमजान का महीना तो ऐसे वजीर आजम से हजारों गुना बड़ा है, हजारों लाखों गुना बड़ा है, उसके एक घंटे के बराबर वजीर आजम नहीं हो सकता है रमजान की बरकतों के। जैसे वो बस्तियां मुजैन की जाती है, रोशनियों का इंतजाम किया जाता है, उसको संवारा जाता है ताकि उनका हम अच्छी तरह यहां इस्तकबाल करें, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान के लिए 11 महीने फरिश्तों को हुक्म दिया। हालांकि जन्नत तो ऐसी चीज है जो बनी बनाई सवारी हुई है, मुजैन है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने अपने हाथ से बनाई जन्नतुल फिरदौस को। यहां जन्नत है ना, एक एक जन्नत कितनी बड़ी है, उसमें अल्लाह पाक ने पहले से तैयारी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में देखा, क्या बयान किया, कुरान करीम में जिक्र है कितना तो जन्नत का, कैसे खादिम, कैसे हूर, क्या क्या चीज। फिर भी अल्लाह तबारक व ताला रमजान के अहतमाम में, रमजान आ रहा है, देखो हम और आप तो एक दिन पहले भी अहतमाम नहीं करते, अल्लाह 11 महीने अहतमाम करवाता है, जन्नत को मुजैन करवाता है, ब्यूटीफाइड बनाता है उसको, खूबसूरत से और खूबसूरत। हदीस में आता है रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। सही बुखारी में यह हुआ, बुखारी शरीफ का हदीस है, हल युकाल रमजान और शहर रमजान, रमजान के जब महीना आता है तो वमन रहा कुल्लहू वासिआ, जन्नत तो अपनी जगह पर है, क्या उसके दरवाजे खुलेंगे तो हम उसमें दाखिल हो जाएंगे? पूरा महीना गुजर जाता है लेकिन हम तो जन्नत में दाखिल नहीं हुए, क्या मतलब इस हदीस का? जन्नत वाले आमाल को अल्लाह ताला बंदों के लिए रमजान में आसान कर देता है। जन्नत में जाने के जो आमाल होते हैं ना, वो आमाल अल्लाह पाक रमजान में बहुत आसान कर देते हैं ताकि आप मेरे बंदे के लिए जन्नत में जब मरने के बाद जाए तो आसानी से जन्नत में चला जाए, ये है, बहुत आसान कर देते हैं और उसकी भी डबल। क्रिसमस में या क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ जाती है ना, या सस्ती भी हो जाती है, या में क्या कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, एक करोगे तो 70 मिलेगा, एक फर्ज नमाज 70 फर्ज के बराबर, और एक नफल पढ़ो तो एक फर्ज के बराबर है रमजान में। मैं 2 रकाब नफल पढ़ू, एक फर्ज नमाज, जैसे मैंने जोहर पढ़ ली ऐसा सवाल, और मैंने जोहर पढ़ ली तो मैंने 70 जोहर पढ़ ली, समझ में आई बात।
और अगर ये अमरा में अल्लाह के घर में अगर एक नमाज आपने जोहर पढ़ ली मक्का मुकर्रमा में तो वैसे तो नॉर्मल 1 लाख का सवाब है, नॉर्मल जब कभी जाओ 1 लाख का सवाब सही हदीस में है, लेकिन रमजान में 1 लाख × 70 गिनती जाओ कितना सवाब एक एक नमाज का। इसीलिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के उम्रा का सवाब ऐसा है जैसे तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पढ़ ली। आई बस मुझे भी जाना है, दुआ करना कल निकलूंगा सुबह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरा सफर भी आसान फरमाए। तो हदीस में आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं रमजान जैसे शुरू हुआ, चांद शुरू हो गया मगरिब से जन्नत के दरवाजे, क्योंकि और तैयार तो हो गई रमजान जन्नत वो तो है ही तैयार, लेकिन अल्लाह ने और तैयार किया है। वो लड़की तो है ही खूबसूरत लेकिन शादी में और खूबसूरत की जाती है, जन्नत तो है ही खूबसूरत लेकिन रमजान की उसको और खूबसूरत कर दी जाती है। अब जैसे ही चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, दरवाजे खुल गए जन्नत के और फौरन जहन्नम के दरवाजे बंद, जहन्नम के दरवाजे बंद। उसका मतलब यह है, क्या मतलब है कि बुरे आमाल की तरफ अब लोगों की रगबत कम हो जाती है, जो और दिनों में गुनाह करता है वो रमजान में कम कर देता है, करता ही नहीं देखते रमजान में भर जाता है मजे भी आसान हो जाता है। तो जो लोग शराब के आदी होते हैं रमजान का महीना आता है तो रमजान के महीने तक वो रुक जाते हैं, और साथ साथ में शैतान को बांध दिया जाता है मगरिब से ही जब चांद नजर आ गया उसको बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। ये सही हदीस है बुखारी शरीफ की जो मैंने आपके सामने बयान किया। सो नेकियों में रुकावट डालने वाला शैतान है उसको बांध दिया जाता है और बंदे के दिल में नेक अमल का जज्बा डाल दिया जाता है। तो कितना आसान कर दिया अल्लाह पाक ने। इसलिए हदीस में आता है एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चल रहे थे, आपने पहले दर्जे पर ऐसे पहले सीढ़ी पर कदम रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर तीसरी सीढ़ी पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहां कदम रखा, आपने आमीन कहा, फिर आपने कदम रखा आपने आमीन कहा, फिर तीसरी पर कदम रखा आपने आमीन कहा। साहबा ने पूछा आप तो हर वक्त चल कर बैठते हैं वहां जाते हैं, कभी आपने आमीन नहीं कहा, आज तो आपने दुआ भी नहीं की और आपने चढ़ते हुए 3 बार आमीन क्यों कहा, 3 बार। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम मेरे पास आए और उन्होंने कहा बाद मन अद्र कर रमजान फलम युग फल हो, अगर बाउदा मन अद्र का कि दूर हो जाए अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से दूर हो, मगफिरत ना हो उस आदमी की, यानी दूर हो जाए वो अल्लाह की जो उसको रमजान का महीना मिला फिर भी उसकी मगफिरत नहीं हुई। बाउदा मन अद्र का रमजान फलम युग फल, ऐसा आदमी अल्लाह की रहमत से दूर हो, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत जिब्राइल की बद्दुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन है भाई, कितनी खतरनाक बद्दुआ होगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो सैयदुल मलाइका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आमीन कहा। और जिसकी मगफिरत न हो रमजान में इतनी आसानी के बावजूद जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के बंद हैं, आसान हो गया सब कुछ, शैतान को जकड़ दिया फिर भी उसकी मगफिरत न हो तौबा नहीं करता। फरमाया उस अल्लाह के जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बद्दुआ की, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है, ये रिवायत तो जो मैंने आपके सामने बयान की बिल्कुल सही है। और उसमें एक और बात है, अगर कोई आदमी रमजान में रोजे को इफ्तार कराए तो उसके गुनाह को भी माफ कर दिया जाता है। दूसरे को इफ्तार करा दिया आपने, नामजर ले नहीं दालजर दे वाला मसला होना चाहिए रमजान में, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ऐसी सखावत अल्लाह के नबी ने मिसाल दी है हदीस में आते हैं पानी बहता है जैसे सैलाब सैलाब बहता है, ऐसी सखावत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जकात तो फर्ज है, वो तो देनी देनी है, उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। आप जकात के पैसे से किसी को इफ्तार नहीं करा सकते, याद रखना। जकात के पैसे से क्यों? इसलिए कि जिसको इफ्तार कराया जाता है तो उसके पूरे दिन का सवाब तुम लूट रहे हो, तो गोया जकात के पैसे तुम ही खा रहे हो, उसमें लिल्ला होना चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ, आपने किसी को मालिक बना दिया जकात का, वो तो ठीक है, उसने जो खरीद लिया खाया पिया वगैरह, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी के रोजे का सवाब मिले तो मैंने 10 आदमी को खिला दिया पिला दिया तो आपको 10 आदमी का सवाब मिल जाएगा रोजे का। जितनी कुरान की तिलावत की, जितना जिक्रुल्लाह की, जितनी इबादत की, सब तुम लूटते चले जाओ। ये जकात तो फर्ज है ही, वो तो देना ही देना है, लेकिन यहां जिस बात का जिक्र है, फरमाया कि जिसने रोजेदार को इफ्तार कराया उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, उसको जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है, और उस रोजेदार को जितना सवाब मिला इतना ही सवाब इस इफ्तार कराने वाले को भी मिल जाता है, और उसके रोजे में कोई कमी नहीं, उसको तो मिलेगा ही। दो खजूर में कितना कमा गया, एक ग्लास लस्सी में कितना कमा गया, किसी को एक ग्लास पानी दे दिया कितना कमा गया। सहाबे किराम तो माशाल्लाह वहां बैठे हुए थे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान की। हाय क्या बात है, अल्लाह के रसूल हम में से किसके पास है खिलाने की ताकत, यानी गरीब सहाबा, तो सहाबा तो गरीब, उनके पास इतना भी नहीं था कि दूसरों को इफ्तार कराए, सरेसनी सब बहुत बेचारे गरीब, तो सहाबा की माली हालत कैसी थी आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी को कुछ खिला करके इफ्तार कराएं, कैसी हालत थी सहाबा किराम की। सब जानते हैं ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या अल्लाह के नबी पर अल्लाह ने उस वक्त रहमत उतारी, मोटी सर मोटी दे रहे, युतिल्लाहु हाद सवाब मन फत्तर साइमन अला मुज़कति लबनिन औ तमरतिन औ शरबत मिन माइन औ कमा قال رسول صلى الله عليه وسلم। फरमाया अल्लाह इसका सवाब देंगे जो रोजेदार को इफ्तार कराए, चाहे एक घोट लस्सी पिला दो, चाहे अगर लस्सी नहीं है तो एक खजूर खिला दो। आगे क्या कह रहे, अगर खजूर भी नहीं मेरे साहबा तुम्हारे पास तो एक घोट पानी पिला दो, पानी पिला दो पानी, उस पर भी तुम्हें उसकी रोजे का सवाब तुम्हें मिलेगा। उस बेचारे ने पूरा दिन कितनी इबादत की होगी, सब कुछ मिल जाता है, मगफिरत भी हो गई मेरी है? ये तो आसान सवाब है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आजकल हमारे यहां बहुत सारी खानकाहें चल रही है हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, खानकाहों में अल्लाह वाले लोग आ जाते हैं, आखिरी 10 दिन में खानकाओं में सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यहां देखो लोग एहतिकाब में बैठते हैं, 50-100 आदमी एहतिकाब में बैठ जाए, आज मेरी तरफ सबकी इफ्तारी हो जाए, कितने बैठ जाए 100 आदमी, 100 रोजे ऐसे मिल गए तुम्हें। इसमें मालदार और गरीब की बात नहीं है, किसी को भी आपने इफ्तार कर, इसमें आलिम और गैर आलिम की बात नहीं, किसी को भी, वो अलग बात है कोई अल्लाह वाला नेक आदमी हो जिसका रोजा बहुत आला हो। बात तो मेरे लिए 50 और 100 पाउंड कुछ भी नहीं है अगर मैंने 100 आदमी की इफ्तार करा दी। रमजान ही एक ऐसा महीना है जिसमें आप सवाब कमा सकते हैं, लूट सकते हैं। आपने नहीं देखा हरम में जाना वो कैसे हाथ पकड़ के बिठाते हैं, मेरे यहां जाओ मेरे यहां जाओ, सब 50-100 को खजूर वगैरह और क्या क्या देते हैं, कहवा वगैरह, कितना खुशी से और चाहते हैं, क्यों? उनको पता है ये मेरे नबी का फरमान है, झूठा नहीं है, सच्चा है, किसी बुजुर्ग की बात नहीं है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो थोड़ा जेब को भी लूज करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा, सवाब कमाना है तो दो बात नहीं चलती है। और ये रमजान का महीना है, इसमें तुम्हारी मगफिरत हो जाती है, मगफिरत हो जाती है, जहन्नम से आजाद हो जाते हैं। नंबर 3 पर जितना सवाब उस रोजेदार को इतना तुम्हें मिल जाएगा, 3 चीजें मिलती है, इससे बनकर क्या।
अल्लाह हू अकबर।
ये खुतबा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में रमजान से पहले, जो मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता था। ये और क्या फरमाया, या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, ये खुतबा था। ऐ लोगों, ऐ मेरे साहबाओ, ये सबको कह रहे अल्लाह के नबी कयामत तक आने वालों को, शहरुन अज़ीम, तुम पर एक बहुत अजीम महीना, बहुत बड़ा महीना आ रहा है। अज़ल्लकुम के माने साया कर रहा है, जैसे ना गर्मी में चल रहा है अचानक साया आ जाए, फरमाया रमजान का महीना तुम पर साया कर रहा है, अभी आ रहा है, तैयार हो जाओ। ऐसा हम भी तैयार हो जाए, तौबा कर ले, दो रकात तौबा की नमाज पढ़े, आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, रात में पढ़े, और अल्लाह से कहे अल्लाह ये रमजान का महीना आ रहा है, हमें इसकी बरकत नसीब फरमा, हमारी मकबरत फरमा, ये महीने के अंदर इबादत की तौफीक नसीब फरमा, गीबतों से हमारी हिफाजत फरमा, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा, हर किस्म के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। अगर अगर हमें कुछ काम नहीं तो हम सो जाएं, लेकिन किसी की गीबत ना करें, किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोले और गंदे काम ना करें, फोन में भी ना करें, जो फोन में जो नंगी तस्वीरें होती है ये सब बंद करें, एक महीने के लिए सब चीज को छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, और खुसूसन आखिरी 10 दिन में। शहर मुबारक है, मेरे नबी आगे क्या करें, ये मुबारक महीना है, बरकत वाला है, और भी महीने के लिए कहा है शहर मुबारक है ये, क्योंकि इसमें बहुत अल्लाह पाक ने सारी किताब को उतारा है, इसमें जन्नत को मुजयन किया जाता है। शहर फी लैलतुल खैर मिन अल्फ शहर है, इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। कितने खुश नसीब है वो लोग, है जिसको जिंदगी में 10 रातें ही मिल जाए ना, गोया उसको 850 साल की इबादत मिल गई। मेरी उम्र तो इतनी है भी नहीं, लेकिन अल्लाह के पास जाएंगे तो 850 साल इबादत का सवाब है। हम तो माई बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई, रह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो अल्लाह क्या कह रहे, हम तो माइल आओ ना, तुम तो आते नहीं हो, हम दे इसको, जो आए उसको देंगे, तुम तो आना ही नहीं चाहते हो। इसलिए ये महीना जो है इसकी कदर करें, खास तौर पर इसमें कुरान ज्यादा पढ़े, कुरान, अगर कुरान नहीं आता है तो फिर अल्लाह का जिक्र करें, खूब अल्लाह का जिक्र, इस्तिग़फ़ार करें, तीसरा कलमा पढ़े, चूंकि 4 चीजों का हुक्म दिया है, नई बात, उसमें सबसे बड़ी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहले कलमे को कसरत से पढ़े, कसरत से। और नंबर 2 इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में 4 काम का हुक्म दिया है, यह हदीस भी साबित है। नंबर 1 क्या पढ़े कसरत से, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह 70,000 टाइम जिंदगी में पढ़ लेता है, उसका कयामत में हिसाब नहीं होगा, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। तो रमजान के महीने बहुत आसान है, रोजाना 1000 बार भी पढ़ ले तो डबल कर ले, 2000 बार कर ले, कोई मुश्किल नहीं, तो हो जाता है। और आखिरी रात में थोड़ा और कर ले, 2500 बार कर ले। नंबर 2 इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह मग़फ़िर ली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 ये 2 चीज का नबी शासन को दिया। नंबर हर फर्ज नमाज के बाद 2 दुआ जरूर करो, और 2 और काम जिसको मैंने अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो क्या है, जन्नत को मांगो, जन्नत से पना मांगो, वो तो आसान है, अल्लाह जन्नत नसीब करो, जन्नत अल-फ़िरदौस नसीब करो, जन्नत से बचा लो, हर फर्ज नमाज पर आओ जाके दुआ करो। ये 4 काम करोगे ना तो रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह पाक हमें इसकी इबादत के में तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इसके अंदर में गुनाह करने से और बुराइयों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिक वल अज़ीम सुल्तान, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदल अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क कुल्लिहिम, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहु अहलुहु, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ 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 معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، آمین آمین۔
अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम कर, करम कर अल्लाह, अल्लाह रहम कर, करम कर, हमारी हमारी आला औलाद की मगफिरत फरमा, हमारी हमारी आला औलाद की मगफिरत फरमा, मेरे दोस्त अहबाब मुतअल्लिक इन सब की मगफिरत फरमा, यहाँ जितने लोग आए हैं मजमे में बैठे हैं, ए अल्लाह मर्द हजरात है, हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं मिक्सर के जरिए, ई मस्जिद के जरिए, ए अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, सब की पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा, पूरी उम्मत की मगफिरत, पूरी उम्मत जिंदों की मगफिरत, मुर्दों की मगफिरत फरमा, ए अल्लाह जो बीमार में शिफा अता फरमा, जो बीमार में शिफा अता फरमा, ए अल्लाह जिनकी घर वाले बीमार है, जिनके घर वाले बीमार है, सबको शिफा अता फरमा, सबको आफियत नसीब फरमा, सबको सेहत नसीब फरमा, ए अल्लाह रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, और रमजान का रोजा रखना आसान फरमा, ऐ अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन, जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नियत करके, वो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। ऐ अल्लाह हमें ईमान, ऐ अल्लाह पक्का ईमान नसीब फरमा, पक्का यकीन भी नसीब फरमा, ऐ अल्लाह इस महीने की हर इबादत को हमें करने की तौफीक नसीब फरमा, तरावी पढ़ना आसान फरमा, तरावी पढ़ना आसान फरमा, बात नमाजें बाजमात पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जिक्रुल्लाह की तौफीक दे, कुरान तिलावत की तौफीक दे, इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत की तौफीक दे, ऐ अल्लाह झूठ से बचा लेना, गीबत से बचा लेना, ऐ अल्लाह कबाइर सगाइर से बचा लेना, ऐ अल्लाह हमारे रोजे खराब न हो जाए, रमजान में तेरे नबी ने फरमाया जो रमजान में गुनाह करता है वो भूखा प्यासा रहे, हमें उसके रोजे की जरूरत नहीं है, अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह हमें इबादत में लगा रखना, अल्लाह बुराइयों से बचा लेना, अल्लाह परेशानियों से बचा लेना, ऐ अल्लाह पूरी जिंदगी जब तक हमारी जिंदगी बाकी रही ईमान पर बाकी रखना, जब मौत आए हर एक को अपने अपने वक्त पर मौत देना, हमारा आइंदा कल का सफर हरमैन शरीफैन का आसान करना, जो इबादतें की जाती है, जिनके लिए दुआएं की जाती है, और जो दुआएं की जाती है, जो अरकान किए जाते हैं, अल्लाह इस मजमे की आमीन की बरकत से उसको आसान कर देना, उसको कबूल करना, उसको कबूल करना, मकबूल कर देना, मंजूर कर देना, अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे, अल्लाह हमारी इस मस्जिद को आबाद फरमा, आबाद करने वाले को आबाद फरमा, वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिह।